श्री वीरसेन आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 16वीं पुस्तक, उसमें से संक्रमण अनुयोग द्वार की चर्चा करते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 424 पर आ गए। 424 आओ। यहाँ प्रदेश संक्रम की बात चल रही थी। प्रदेशों का संक्रम होना यानी अन्य प्रकृति रूप होना, उसको प्रदेश संक्रमण कहते हैं। और उसमें प्रदेशों के यानी परमाणुओं की संख्या की बात आती है, इसलिए यहाँ पर पांच प्रकार से इसको बताया संक्रमण को। अधप्रवृत्त संक्रमण, विद्यात संक्रमण, उद्वेलना, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। उसमें से हमने देखा था कि अधप्रवृत्त संक्रमण कहाँ होता है, तो जहां तक बंद है वहां तक अधप्रवृत्त संक्रमण होता है। जहां बंद नहीं है परंतु सातवें गुणस्थान वाले जीव है, सातवें गुणस्थान तक के जीव, उनमें विद्यात संक्रमण होता है। अपूर्वकरण के बाद, अपूर्वकरण गुणस्थान के बाद वहां गुण संक्रमण होता है। और जब अंतिम फाली अन्य प्रकृति रूप होना है तो उसमें सर्व संक्रमण भी होता है। इस प्रकार ये पांच प्रकार के सही। और उद्वेलना प्रकृति जो है 13 विशिष्ट प्रकृति, उसमें उद्वेलना भी होती है। तो उसमें बहुत सारे हमने ग्रुप भी देखे थे। अब यहाँ उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम कौन से जीव को होता है उसकी बात चल रही है, यानी विशिष्ट प्रकृति का उत्कृष्ट संक्रमण कौन से जीव को होगा, यानी उसका स्वामी कौन है। तो स्वामित्व की यहाँ चर्चा चल रही है 421 पृष्ठ से। जरा निकालना वहां से देखते। बहुत सारे कर्मों में तो ऐसा ही देखा था कि गुणित कर्मांशिक जीव, तो गुणित कर्मांशिक सातवें नरक का अंत की ओर ऐसा वाला जीव लिया था। तो मति ज्ञानावरण का भी हमने देखा था कि गुणित कर्मांशिक सातवें पृथ्वी से मरकर तिर्यंश में आया और आवली काल में उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है। ऐसी बात चार अन्य चार ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण अंतराय के बारे में बताई। निद्रा और प्रचला का कहाँ होता है, तो गुणित कर्मांशिक परंतु चरम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय। स्त्यान ग्रुद्धित रहे, ये 422 पृष्ठ पर लिखा है सेकंड लाइन में, तो वो सर्व संक्रमण जहां होता है उसका जो क्षपक है नवे गुणस्थान वाला, जब अंतिम फाली उसकी संक्रमित होती है। सातावेदनीय का कहाँ होता है, तो गुणित कर्मांशिक सातवीं पृथ्वी से मरकर तिर्यंश हुआ, उसी समय में साता का बंद किया और लगातार बंद करता रहा, फिर बाद में असाता का करना लगे, यानी बंधावली बीत जाने के बाद उसको उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है। अब मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का, तो उसमें हमने देखा था उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण किसके होता है, तो कम से कम काल में दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला जीव, तो मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का जो प्रदेश संक्रमण होता है वहां उसकी उत्कृष्ट संख्या पाई जाती है। सम्यक प्रकृति का कहां होता है, तो सातवीं पृथ्वी का नार की गुणित कर्मांशिक, आयु में जब अंतर्मूर्त शेष रहता है तब सम्यक्तों को प्राप्त हुआ। और जो गुण संक्रमण काल है, उसमें सम्यक्त्व को पूर्ण करके फिर मिथ्यात्व में आ गया। तो प्रथम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि के उत्कृष्ट गुण संक्रमण काल में सम्यक्त्व को पूर्ण करके, क्योंकि उत्कृष्ट गुण संक्रमण किया ना, वो काल गुण संक्रमण का काल उत्कृष्ट था, तो उसमें क्या हुआ, सम्यक प्रकृति के परमाणु बढ़ गए। और फिर ऐसे सम्यक प्रकृति के परमाणु बढ़ गए, अभी वह जीव मिथ्यात्व में आया, तब उसका आते ही अंतर्मूर्त तक अधप्रवृत्त संक्रमण होता है, तो वो प्रथम समयवर्ती मिथ्या दृष्टि है, उसका सम्यक्त प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है। अनंतानुबंधी कषायों का कहाँ होता है, तो सातवीं पृथ्वी का ही गुणित कर्मांशिक जीव लिया और आयु शेष रहने में अंतर्मूर्त बाकी है, तब उसने अनंतानुबंधी चतुष्क की भी संयोजना की, यानी वो समझ लेना पहले समय दर्शन प्राप्त किया हुआ है उसके, तभी तो विसंयोजना करेगा ना, चौथे गुणस्थान वाला ही करेगा। तो अंत में इतना क्यों छोड़ा, क्योंकि वो मिथ्यात्व में जाके मरने वाला है, इसलिए अंतर्मूर्त पहले वाला काल लिया। तो अनंतानुबंधी विसंयोजना को प्रारंभ करके सर्व संक्रमण द्वारा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है क्या अर्थ है, पूरे के पूरे उसके परमाणु जो है वो अन्य जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन और नौ नौ कषाय रिमेनिंग जो 21 प्रकृति है उस रूप परिणमित करते हैं, तो पूरा का पूरा संक्रमित होता है, तो वहां उसको उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण है। आठ कषायों का कहाँ होता है, अनंतानुबंधी बारे में तो विसंयोजन के समय में होता है, और अन्य आठ का कब होगा, जब उसकी क्षपणा होती है, वहां भी गुणित कर्मांशिक लेना, और जो नौवे गुणस्थान वाला क्षपक है जहां पर वो आठ कषायों का क्षय कर देता है, तो सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होकर आठ कषायों की अंतिम फाली, यानी वो सारे कषाय जो है वो संज्वलन रूप से होकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अंतिम फाली में सर्व संक्रमण है, तभी उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है। यहां तक तो हमने पढ़ा था, अब आगे पढ़ेंगे 424 पृष्ठ पर। नपुसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, तो जो गुणित कर्मांशिक देव ईशान कल्प में, ईशान कल्प कहो या ईशान स्वर्ग कहो एक ही बात है ना, संक्लेश परिणाम से एकेंद्रिय प्रायोग्य बंध करता हुआ नपुसक वेद को बार बार बांध कर वहां से चित हो स्त्री अथवा पुरुष उत्पन्न होता है। क्या कहते हैं, पहले उस हमने देखा ना अंतिम छह महीने में उनके संक्लेश परिणाम हो रहे, तो एकेंद्रिय जैसे उसके कर्म बन रहे, एकेंद्रिय के योग्य, तो नपुसक वेद को बार बार बांधे, अभी एकेंद्रिय संबंधी उसने आयु नहीं बांधी है, एकेंद्रिय इतनी स्थिति और अनुभाग तो वो बांधेगा नहीं, क्योंकि वो पंचेंद्रिय है और उत्कृष्ट संक्लेश है। एकेंद्रिय प्रायोग्य यानी एकेंद्रिय जाति बांधते हुए उसके कौन कौन सी प्रकृतियां बन सकती है, तो नपुसक वेद उसको बांधेगा एकेंद्रिय के साथ, एकेंद्रिय प्रकृति बांध रहा है, तो एकेंद्रिय प्रकृति के साथ अन्य कौन सी प्रकृतियां बन सकती है, स्थावर है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त तो बनती नहीं उनके, तो स्थावर आतप आदि बन सकती है। तो एकेंद्रिय जब बांधेगा, जिस समय वो एकेंद्रिय जाति बांध रहा है उस समय वो नपुसक वेद को भी बांधेगा, ऐसे बार बार, क्योंकि संक्लेश तो लगातार संक्लेश नहीं है, जहां जब जब उसका संक्लेश परिणाम चल रहा है तब तब वो तिर्यंच गति बांधेगा, एकेंद्रिय जाति बांधेगा, स्थावर नाम कर्म बांधेगा, उसके साथ नपुसक वेद बांधेगा, उसका पैकेज होता है ना, जो जो कुछ बनता है उसके साथ एकेंद्रिय संबंधी उसको बंद हो रहा है। तो एकेंद्रिय संबंधी बंध कितने होते हैं याद है कुछ, नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां बनती है एकेंद्रिय, जब एकेंद्रिय संबंधी बंध चल रहा है, अपर्याप्तों के साथ वो 23 वाला होता है, बंद बंद की बात है, उदय की बात नहीं चल रही है। हाँ, और एक इंद्रिय संबंधी बंद होगा तो कितने बनते हैं? हाँ, एक इंद्रिय पर्याप्तों में 25 है, और आतपादी होगा तो 26 वाली होती है। हमने देखा था अलग अलग गतियों के साथ कितने कितने मिलते, देव नारकी होते तो 28 का बंद होता है। अब उसमें वो तीर्थंकर प्रकृति को छोड़ा था देव के साथ, तो ये ऐसे अलग अलग हमने देखी थी। मनुष्य तिरियंचों की 29 वाला बंद होता है, तो यहाँ एकेंद्रिय संबंधी बंद चल रहा है। एकेंद्रिय के प्रायज्ञ ने एकेंद्रिय बांध नहीं रहा है, एकेंद्रिय प्रकृति जब बनती है तब कौन कौन सी प्रकृति बनती है? तो जिस समय एकेंद्रिय का जाति का बंद हो रहा है उस समय नपुसक वेद बांध रहा है, क्योंकि हमारा अभी विषय कौन सा चल रहा है, नपुसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण किसको होगा, तो उसने नपुसक वेद बांधा है अभी बारंबार। अब बाद में उत्पन्न कहाँ हुआ, स्त्री अथवा पुरुष में, क्योंकि संकलेश जब जब हुआ था तभी तभी बांध रहा था, परंतु आयु या अन्य जो कुछ है कहाँ उत्पन्न होना होगा है वो तो आयु के अकॉर्डिंगली उसके अन्य भी उसने बांधे नहीं बांधे ऐसी बात नहीं है। देखो, च्युत हो स्त्री अथवा पुरुष उत्पन्न होता है, और तत्पश्चात मास पृथक्त्व अधिक 8 वर्षों के बीतने पर स्त्री या पुरुष वेद के साथ सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत हो। ओहो, इन्हें इतने एकेंद्रिय जैसा बंद भी किया है फिर भी आया है यहाँ, और हाँ मनुष्य में आया है। स्त्री अथवा पुरुष उत्पन्न हो यानी स्त्री वेद या पुरुष वेद के साथ उत्पन्न हुआ है, और मास पृथक्त्व और 8 वर्ष बीत जाने पर स्त्री या पुरुष वेद के साथ सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत हो, सर्व संक्रम द्वारा नपुसक वेद की अंतिम फाली को संक्रांत करता है। पहले में पहले नपुसक वेद की क्षपणा होती है, स्त्री वेद के साथ चढ़ा या पुरुष वेद के साथ चढ़ा हो नपुसक वेद की क्षपणा हो जाती है, वो अन्य वेद रूप हो जाते हैं, तो उसके नपुसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। अब स्त्री वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, जो गुणित कर्मांशिक असंख्यात वर्षायुष्क जीवों में उत्पन्न होकर सर्व लघु काल स्वरूप पल्योपम के असंख्यातवे भाग में स्त्री वेद को पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होता हुआ जघन्य देव स्थिति यानी 10,000 वर्ष के साथ देव उत्पन्न हुआ है, तत्पश्चात वहां से च्युत होकर सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होकर जब वह स्त्री वेद की अंतिम फाली को सर्व संक्रम द्वारा पुरुष वेद में संक्रांत करता है तब उसके स्त्री वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। ये प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए ना यहाँ पर, इत्थिवेदं पूरे दूण हाँ कदली घात से मरा हुआ। देखो इसका विशेषार्थ दिया, उसको पढ़ेंगे फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे अगर नहीं समझे तो। क्या कहते हैं विशेषार्थ, यद्यपि तत्वार शूद्र आदि अधिकांश ग्रंथों में भोग भूमियों में अकाल मृत्यु इन्हें कदली घात मरण का प्रतिषेध किया गया है, नहीं होता ऐसा बताया है, और हम भी अभी तक ऐसा ही हाँ कहते आए हैं, तथापि कुछ आचार्य वहाँ अकाल मरण को भी स्वीकार करते हैं। इसी मतभेद के अनुसार यहाँ भोग भूमियों में अपमृत्यु को त्यू करना उसको अपमृत्यु को स्वीकार कर उपर्युक्त स्त्रीवेद के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम को घटित किया गया है। यहाँ चूर्णिकार यति वृषभाचार्य का क्या अभिमत रहा है यह ज्ञात नहीं होता, कारण कि उन्होंने असंख्य वस्साहुएसु इथिवेदम पूरे दूण इतना मात्र निर्देश किया है। पल्लवम के असंख्यातवे भाग मात्र सर्व लघु काल का निर्देश नहीं किया। ये क्या कहना चाहते हैं? कषाय पाहुण में जो लिखा है, अभी जो हमने पेज पढ़ा ना 424, उसमें जो नीचे का जो चिन्ह है, जो ऊपर स्त्रीवेद के लिए लिखा है ना, ऊपर प्राकृत में जो अंतिम लाइन में वो काला वाला चिन्ह जो है, वैसा जो नीचे लिखा है वहां पढ़ते हैं। देखो, इत्थि वेदस्य उपकसौ पदेश संकमो कस्य, ये यतिवृत्सभाचार्य के मत के अनुसार ये यहाँ प्ररूपणा है। गुणित कम्मंसियो असंख्यज वस्साहुएसु इत्थि वेदम पूरे दूणा, ऊपर जो हमने पढ़ा था वहां भी गुणित कर्मांशिक लिया, असंख्यात वर्षायुष्क लिया, परंतु सर्व लघु काल स्वरूप पल्लोपम के असंख्यातवे भाग में स्त्रीवेद को पूर्ण करके ऐसा लिखा था, और यहाँ असंख्यात वर्षायुष्क है और वहां पर उसने स्त्रीवेद को पूर्ण करके। तदो पूरी द कमसियो खवनाए अभुठिदो, ऐसा जो पूरी त किया उसने, पूर्ण किया है, फिर वहां से क्षपणा में अभुठिदो यानी सन्मुख हुआ। तदो चरिम ठिखंडयम चरिम समय संचो मानस तस्स इति वेदस उक्कसो पदेश संकमो। अभी हम 425 पर फिर जहां से छोड़ा था, यति वृषभाचार्य यानी कषाय पाहुड़ में यह चूर्णी सूत्र जो है उसमें वो कदली घात को नहीं स्वीकारा है, और ये जो अन्य मत है उसमें कदली घात का स्वीकार किया है। उसमें उन्होंने सर्व लघु काल जो है उसकी बात नहीं ली है। यहाँ लघु काल की बात है ना, पल्ले के असंख्यात भाग इतने लघु काल में उसको पूर कर, वो उसने उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। निर्देश नहीं किया। अभी पांचवी लाइन, असंख्यात वर्षायुष्क में ही उन्होंने स्त्रीवेद को पूरा कर दिया। अब यहां कहते हैं पल्ले के असंख्यात विभाग में किया, ये दोनों में डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है? उन्होंने जिन्होंने कदली घात माना है उन्होंने वो सर्व लघु काल में लिखा है, और इन्होंने उसकी कोई निर्देश किया नहीं है पूरी पूरे दुना। अब कर्म, पांचवी लाइन, कर्म प्रकृति आदि श्वेतांबर ग्रंथों में यह अभिमत अवश्य पाया जाता है। प्रसिद्ध टीकाकार आचार्य मलयगिरी ने बतलाया है कि स्त्री वेद का यह उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम इसी युक्ति से बन सकता है, अतः इसी युक्ति का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य युक्तियां चिरंतन ग्रंथों में देखी नहीं जाती। यथा ये कर्म प्रकृति में क्या लिखा है, वो लिखा है यह एवमेव स्त्री वेदस्य उत्कृष्टम आपूर्णम उत्कृष्टश्च प्रदेश संक्रमः। केवल ज्ञानेन उपलब्धो नान्यथा इति एषेव युक्ति अत्र अनुसर्तव्या। न का उकार रह गया है, अनुसर्तव्या ने उसका अनुसरण करना चाहिए। न युक्ति अंतराणी, अन्य युक्तियों का नहीं। युक्त्यंतराणाम चिरंतन ग्रंथेषु अदर्शनतः निर्मूलतया अन्यथा अपि कर्तुम अशक्यत्वात्। अब हम आगे पढ़ेंगे पुरुष वेद की बात। पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जिसने ईशान कल्प के देवों में नपुसक वेद को पूर्ण किया है, तत्पश्चात असंख्यात वर्षायुष्कों में स्त्रीवेद को पूर्ण किया है, तत्पश्चात मरण को प्राप्त होकर जो जघन्य देव स्थिति से उत्पन्न हुआ है और तत्पश्चात मरण को प्राप्त होकर मनुष्य होता हुआ सर्व लघु काल में अन्यतर चाहिए अन्यंतर हुआ है। ऊपर क्या लिखा है, अन्नदरेण यानी अन्यतर लिंग के साथ क्षपणा में उद्यत होता है उसके जब तक सर्व संक्रम द्वारा पुरुष वेद संक्रांत तो होता है हीता हुआ है होता है तब तक पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। हाँ, अलग वेद से चढ़ा है और पुरुष अन्य तरह वेद के साथ चढ़ा है। देखो देखो, अन्य तरह लिंग के साथ क्षपणा में उद्यत होता है तब उसके जब तक सर्व संक्रम द्वारा पुरुष वेद संक्रांत होता है तब तक पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। यानी नपुसक वेद वाला भी अगर उसका उदय मिट जाता है फिर भी सत्ता में पुरुष वेद पड़ा है, वो पुरुष वेद जो है वो क्रोध रूप संज्वलन क्रोध रूप संक्रमित हो जाता है उसका अंतिम, इसलिए सर्व संक्रम लिया उसको। ख्याल में है, स्त्री वेद या नपुसक वेद के साथ चढ़ा है वो भी पहले नपुसक वेद की क्षपणा कर जाए परंतु सत्ता में उसके जो कोई है पुरुष वेद आदि पड़े हुए है तो वो जो है उदय रुक गया है उसका, फिर भी स्त्री वेद की क्षपणा हो जाएगी और अंत में तो पुरुष वेद ही, क्योंकि वहां जो नया बंध जो है ना किसी भी वेद के साथ क्यों ना चढ़ा हो, बंध तो पुरुष वेद का है और उसके तो परमाणु पड़े हैं अंदर। अन्यतर वेद क्योंकि उसने वो तो पहले ही बंध है उदय है सॉरी उदय है इसलिए उसकी अन्य वेदों की तो चलता रहे ना, उसका खिरना चलता था। यहाँ क्यों पुरुष वेद का संक्रमण कब होता है, बाद में होता है, सबसे अंत में पुरुष वेद का संक्रमण होता है वो संज्वलन क्रोध रूप से हो जाता है। वो इसमें भले आ गई है परंतु आई है तो वो तो लास्ट में इसी के परमाणु बढ़ेंगे तब उसको पुरुष वेद कहलाएंगे हम, तो उसका सारा माल इसमें आ गया है तो पुरुष रूप पुरुष वेद रूप से जो है वो इसी उसी का सर्व संक्रमण हो जाएगा। अंतिम फाली हमेशा ही सबसे बड़ी होती है, कितना भी पहले खिर गया हो कितने भी गुण श्रेणी हुई जो कुछ हुआ हो अंतिम फाली सबसे बड़ी होती है। अब छह नौ कषायों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, जो गुणित कर्मांशिक ऊपर भी गुणित ही लिखा है, जो गुणित कर्मांशिक सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होकर जब सर्व संक्रम द्वारा छह नौ कषायों की मूंग की हुआ अंतिम फाली को संक्रांत करता है तब उसके उनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। उसका उदय तो पहले रुक जाता है परंतु बाद में उसका संक्रमण होता है ना, नौ नौ कषाय सब क्रोध रूप से हो जाते हैं। संज्वलन क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, जो ईशान कल्प के देवों में नपुसक वेद को पूर्ण करके असंख्यात वर्षायुष्कों में स्त्री वेद को पूर्ण करता है, फिर स्त्री वेद के पूर्ण हो जाने पर जो सम्यक्त को प्राप्त करके तत्पश्चात पुरुष वेद को पूर्ण करता है, फिर पुरुष वेद के पूर्ण हो जाने पर मिथ्यात्व को प्राप्त होकर तत्पश्चात मृत्यु को प्राप्त होता हुआ जघन्य देव स्थिति से उत्पन्न होता है, वहां से च्युत होकर जो अष्टवर्षीय मनुष्यों में उत्पन्न हो 8 वर्ष का होता हुआ संयम को प्राप्त होकर अंतर्मूर्त काल में क्षपणा में उद्यत होता है, उसके जब संज्वलन क्रोध सर्वसंक्रम द्वारा संक्रम को प्राप्त होता है तब उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। ये पूर्ण करता है क्या अर्थ क्या होता है? बांधता है कैसा हो? पुरुष वेद के पूर्ण हो जाने पर मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। हाँ, उदय की बात तो है ही नहीं। ईशान कल्प के देवों में नपुंसक वेद को पूर्ण करके ऐसा भी होता है उसका संक्रमण द्वारा वो नष्ट करके? क्या नहीं हो सकता? नष्ट तो होते ही नहीं ना, अंदर पड़े ही रहते हैं। पूर्ण करते का अर्थ ख्याल में नहीं आ रहा है। अभी पुरुष वेद को पूर्ण करके ना उसका क्या अर्थ होता है? पुरुष वेद के पूर्ण हो जाने पर मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। पूर्ण करने का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर क्या लिखा है? पुनः पुरुष वेदे परिवुन्ने मिच्छत्तम गदो, उसका अर्थ देखते हैं क्या है? तदो उच्चदो नहीं प्रतिशु परिवन्ने इति पाठा, परिवन्ने ने ऐसी बात आई थी ना नपुंसक वेद में भी, पूर्ण करता है। पूर्ण करता है का अर्थ क्या होता है? बांधने की अपेक्षा आप कह रहे हैं ना? ख्याल नहीं है ना पूर्ण करता है का क्या अर्थ होता है? अब जब वहां जो कदली घात की बात की, किसी ने उसकी बात की किसी ने नहीं की, परंतु कदली घात के द्वारा क्या सिद्ध हुआ? त्रिवेद को पूर्ण करके जल्दी मरा? आपको कहीं मिलेगा तो? पर इसका ऐसा कहीं पूर्ण करना उसका अर्थ नहीं होता है। देखो कहीं मिले तो, यानी ये जो कषाय प्रावृत्त की यहाँ जो लिखा है ना 404 में 34-35, वहां उसका कोई एक्सप्लेनेशन होगा तो मिलेगा। आप किस में देख रहे हैं? हाँ क्योंकि पूर्ण करता है का अर्थ यदि ख्याल में आता है तो ही वो, क्योंकि प्रदेश मैक्सिमम होगा तभी उसके उत्कृष्ट संक्रमण होगा। हाँ क्योंकि सत्ता में ज्यादा मैक्सिमम है तभी तो हो सकता है ना उसको। ये पूरी दोनों का अर्थ कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो संज्वलन क्रोध को कैसे लिया? तो ऐसा ही अर्थ होना चाहिए जैसे अरविंद कहते ना, ईशान कल्प में नपुसक वेद को पूर्ण किया है ने मैक्सिमम पॉसिबल नपुसक वेद को बांधा, क्योंकि ईशान कल्प में बारंबार उसने संकलेश परिणाम किए तो ज्यादा बंध हुए ना वहां पर। अन्यत्र जो भवनत्री का और ईशान तक उसका बंध होता है, तो ईशान वाले को लिया यहाँ पर। तो स्त्री वेद को पूर्ण करने के लिए असंख्यात वर्षायुष में क्यों लिया फिर? हाँ इतना ही लेना है अभी। संज्वलन क्रोध का उत्कृष्ट द्रव्य कब होगा? संक्रमण होने वाला, तो ये जो वेद का द्रव्य है ना वो क्रोध रूप हो जाता है। तो तीनों वेद में मैक्सिमम द्रव्य था वो संज्वलन क्रोध रूप हो गया, और जब संज्वलन क्रोध है वो सर्व संक्रम द्वारा मान रूप हो जाएगा तब उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होता है। इतनी बातें इसमें से निकलती हैं। तीनों वेद के परमाणु मैक्सिमम थे, वो सबके सब क्रोध रूप हो गए। देखो जो नौ कषाय और कषाय इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहीं समझे? समय प्रबद्ध जो है, हमने पहले थोड़ा आपको याद करना है, कषायों में और नौ कषाय में इक्वल होता है। अब जो छह जो नौ कषाय वो वेद रूप हो गए और वेद भी मैक्सिमम बांधा है, वो सारा क्रोध रूप हो गया, यानी हाफ जो है ना वो सारा क्रोध में आ गया है, अन्य में इतना नहीं है। यानी समय प्रबद्ध का जितना आधा या जो सत्ता में पड़े हुआ जो है ना डेढ़ गुना अनिगुणित समय प्रबद्ध, वो आधा माल तो नौ कषायों में था, वो वेद रूप होते हुए अभी क्रोध रूप हुआ है, यानी क्रोध में मैक्सिमम आया है सब। अपने हिस्से का कितना आया उसमें? क्रोध मान माया लोभ जो है संज्वलन, अभी हम अकेले संज्वलन की बात करेंगे, तो संज्वलन क्रोध मान माया लोभ में से तो उसका तो अपना चौथा भाग तो है ही है, और इसका आधा पूरा का पूरा आधा इस उसके, यानी अकेला आधा ज्यादा नहीं है। देखो ऐसा है, पहले हमने दो भाग किए, 50-50% हुआ ना, तो हाफ हाफ यहाँ हुआ, अब यह हाफ के चार हुए, हाफ के चार है ना, 1/8 हुए, तो क्रोध के खाते में भी 1/8 था और ये पूरा हाफ इसमें मिल गया, 1/8 + ½। हाँ तो इतना सारा उसके खाते में आ गया, और अभी ये सारा क्रोध है वो मान रूप हो जाएगा तब उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण है। हाँ ये जनरल है स्टेटमेंट। अभी जो क्रोध है वो मान रूप हो गया, अभी इसका जो खाते में जितना था वो मान को मिलेगा, मान का और उत्कृष्ट संक्रमण उसके सर्व संक्रमण के समय में हो जाएगा। देखो अभी हम पांचवी लाइन में आए, यही जीव जब सर्व संक्रम द्वारा संज्वलन मान को संक्रांत करता है, यही जीव ने जिसने क्रोध का उत्कृष्ट संक्रमण किया है, अभी सभी परमाणु मान रूप हो गए हैं, जब वो मान को सर्व संक्रमण करके माया में परिणमित करेगा तब उसके संज्वलन मान का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। यही जीव जब सर्व संक्रम द्वारा संज्वलन माया को संक्रांत करता है तब उसके संज्वलन माया का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। संज्वलन लोभ का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक सर्व ह्रस्व काल में यानी लघु काल में छोटे काल में चार बार कषायों का उपशम करके हाँ चार बार उपशम श्रेणी चढ़ा। सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होता हुआ अभी पूरा पढ़ेंगे ना। हाँ देखो क्या किया उसने, गुणित कर्मांशिक लिया, चार बार कषायों का उपशम किया है, लघु काल सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होता हुआ, जब अकृत अंतरकरण रहने के अंतिम समय में, अंतरकरण करने के पूर्व वाला समय, अकृत अंतरकरण का अंतिम समय लिया ना, संज्वलन लोभ को संक्रांत करता है, तब उसके संज्वलन लोभ का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। देखो यहाँ संज्वलन लोभ का क्या कहा है, उसका अदप प्रवृत्त संक्रमण है। देखो देखो हमने सभी ज्ञानावरण को वगैरह वगैरह लिया था, उसमें संज्वलन लोभ को लिया था, वो अन्य प्रकृति रूप नहीं हो रहा है, अदप प्रवृत्त संक्रमण होता है उसका, ये निकालना पेज 410। ये नीचे टेबल लिखा है ना, उसमें सेकंड लाइन में अंत में संज्वलन लोभ जिसको हमने 11 नंबर दिया था, यानी ये जो 39 प्रकृतियां गिनी थी उसमें वो सभी पांच ज्ञानावरण चार दर्शन और वगैरह वगैरह लिया था, तो ये जो संज्वलन लोभ भी उसी के साथ, तो उसमें एकमात्र अधप प्रवृत्त संक्रमण होता है। क्योंकि वो जिसमें अभी वो परिवर्तित हो जाए ऐसी प्रकृति नहीं ना वहां पर, तो अधप प्रवृत्त संक्रमण है उसमें। तो ये किसके होता है, अंतर करने के पहले वाले समय, अंतर किया उससे पूर्व वाला समय। हाँ क्षपणा में अंतर होता है ना, उस दिन हमने निकाल के देखा था ना लब्धी सार में, नहीं नहीं समझा, चारित्र मोहिनी की वो प्रकृति में अंतर होता है और नीचे जो है ना वो कृष्टियां करता है, संग्रह कृष्टियां वगैरह होती रहती है, हमने क्षपणा सार निकाल के देखा था ना अंतर करता है कि नहीं, हमें भी ऐसे ऐसा लगा था कि क्या होता था। अब आगे चारों ही आयु कर्मों का प्रदेश संक्रम नहीं होता, क्योंकि वो तो प्रकृतियां जो है आपस में संक्रमित नहीं होती। नरक गति और नरक गति प्राज्ञानोपूर्वी का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है, जो गुणित कर्मांशिक पूर्वकोटि पृथक्त्व काल तक बंद करता हुआ मनुष्य व तिर्यंचों में स्थित रहता है, यह तो बंद करता हुआ लिखा, हाँ पश्चात क्षपणा में उद्यत होकर जब वह सर्व संक्रम द्वारा नरक गति और नरक गति प्रायज्ञानों पूर्वी की अंतिम फालियों का संक्रांत करता है, फालियों को अंतिम और फालियों को कैसा कहा, अंतम फाली को चाहिए ना, अच्छा फालियां दोनों की अपनी अपनी, हाँ दोनों की अपनी अपनी, तब उसके उन दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। ये समझ में आया क्या, गुणित कर्मांशिक है उसके पहले ही सत्ता में ज्यादा है, और वह पूर्व कोटि पृथक्त्व लिखा है, पृथक्त्व लिखा, अकेला पूर्व कोटि नहीं लिखा, पूर्व कोटि पृथक्त्व काल तक बंद करता हुआ मनुष्य व तिर्यंचों में स्थित रहता है, यानी लगातार यानी मनुष्य 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 फिर तिर्यंच बीच में फिर मनुष्य मनुष्य तिर्यंच, इस तरह से कितने ही पूर्व कोटि पृथक तो हो जाएंगे उसके, तो ऐसे करता हुआ बाद में क्षपणा में उद्यत होकर यानी इतना करके अभी वो चरम शरीर हुआ है, अंतिम भव आया उसका। तो क्षपणा कब होती है? नरक गति, नरक गति अनुपूर्वी की, क्षपक श्रेणी में। परंतु कौन सा गुणस्थान में? नवे में। ये नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का क्षय होता है ना, तब उसका जब सर्व संक्रमण होगा तब दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। कौन से प्रकृतियों में टर्न हो जाएंगे ये? मनुष्य गति, मनुष्य गति अनुपूर्व। अब तिर्यक गति, तिर्यक गति प्रायज्ञानुपूर्वी का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? तो जो गुणित कर्मांशिक सातवीं पृथ्वी से निकलकर और समयाविरोध से मनुष्यों में उत्पन्न होकर समय विरोध का अर्थ क्या होता है? समयाविरोध नहीं, समयाविरोध से मनुष्यों में उत्पन्न होना है ने क्या? समय ने शास्त्र, समय ने शास्त्र, आगम, आगम के अविरोध से मनुष्यों में उत्पन्न होता हुआ। यानी इमीडिएट मनुष्यों में तो उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि सातवें नरक का नारकी तो नियम से तिर्यंचों में ही उत्पन्न होगा। अब वहां जो कुछ काल बिताकर फिर वो मनुष्य में आ सकता है, इसलिए लिखा समयाविरोध। आगम से अविरोध, हाँ शब्द का ही है। यानी ऐसा नहीं समझना कि वहां से डायरेक्ट मनुष्यों में आते हैं, आगम से अविरोध रूप से। यानी बीच में एक तिरंज की पर्याय चली जाएगी और मनुष्यों में आ सकता है बाद में। मनुष्यों में उत्पन्न होकर सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होता है। अभी जैसे हमने नरगति नरगत्यानुपूर्वी का जो क्षय है उसका नवे गुणस्थान वाला क्षपक करता है, उसी पोजीशन पर इसका भी क्षय हो जाता है। तो तिरंज गति तिरंज गत्यानुपूर्वी का क्षपणा में उद्यत होता है, वह जब इनकी अंतिम फाली को सर्व संक्रम द्वारा संक्रांत करता है तब इसके उनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। ये बात ख्याल में आई? वहां पर जो नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी के लिए मनुष्य और तिर्यंचों में घुमाया था बहुत लंबे काल तक, यहाँ तिर्यंच गति बांधने वाला ऐसा मैक्सिमम कौन है? तो सातवें नरक का, वो तो हमेशा तिर्यंच गति बांधता रहता है। तो उसको लिया और वो भी गुणित कर्मांशिक लिया, तो उसके पश्चात जब कभी अर्लिएस्ट मनुष्यों में आ सकता है, आगम से अविरोध रूप से ऐसा लिखा है बीच में, और उसी भव में मोक्ष जाने वाला है अभी वो, और सर्व लघु काल में क्षपणा करने वाला है 8 वर्ष और कुछ जो यथा योग्य काल। मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? देखो अभी तो यहां हम क्षपणा करने वाला नहीं कह सकते, क्योंकि ये इसके तो उदय चलेगा ना, 14वें के अंतिम समय तक उदय चलेगा इसका। अभी इसका ये उद्वेलना वाली प्रकृति है, तो उद्वेलना भी अंत में, उद्वेलना के बाद गुण संक्रम होकर अंतिम जो फाली होती है ना पूरी संक्रमित, तब इसको ले लेंगे। देखो मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक सातवीं पृथ्वी में प्रारंभिक अंतर्मुहूर्त में सम्यक को प्राप्त होकर है, तो गुणित क्रमांशिक मैक्सिमम सत्ता वाला लिया, और सातवीं पृथ्वी में सातवें नरक में शुरू शुरू में सम्यक को प्राप्त हुआ। सर्व निरुद्ध अर्थात आयु में अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, यानी अधिक से अधिक काल तक वो सम्यक में रहा। मनुष्य गति अधिक काल तक बांधने वाला है ना, सम्यक दृष्टि है तब तक वो मनुष्य गति को बांधेगा। फिर वहां से निकलकर जो तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ है क्योंकि वो तो नियम से तीर्यंचों में ही उत्पन्न होते हैं। उसके तीर्यंच होने के प्रथम समय में मनुष्यगति और मनुष्यगति प्रायज्ञान पूर्वी का, अच्छा यहाँ पर लिया, उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, यानी वो तीर्यंच गति रूप से टर्न होते हैं, उसको लिया। तो यहाँ पर उसका कौन सा, वो अधव प्रवृत्त संक्रम होगा, क्या होगा? देवगति देवगति प्राज्ञान पूर्वी, वैक्रियक वैक्रियक शरीर अंगोपांग, वैक्रियक बंधन और वैक्रियक संघात का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक जीव मनुष्य व तीर्यंचों में इन प्रकृतियों की पूर्व कोटि पृथक्त्व तक बांधकर क्षपणा में उद्यत चाहिए, उद्योत नहीं, उद्यत यानी उत्सन्मुख होता है, प्रयत्नशील होता है। ऊपर लिखा हो ना, अब बुट्ठी दो, उसके अभिमुख होता है, उद्यत होता है। उसके जब परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, ये कब होती है? हाँ, देवगति देवगत्यान पूर्वी के बंध की विच्छित्ति कब होती है? आठवें गुणस्थान के छठवें भाग में। उसके पश्चात बंधावली के व्यतीत होने पर इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। वहां तक तो बांधता है और आवली काल के बीतने पर उसका उदय हो जाता है, सॉरी संक्रम हो जाता है, उदय नहीं, यहाँ तो उदय का सवाल नहीं है, ख्याल में आती बात? बंध रुक गए ना, आठवें गुणस्थान तक बंद है, जब तक बंद है तब तक अधा प्रवृत्त संक्रमण होगा, बाद में उसका गुण संक्रमण होगा। क्या? हाँ, परंतु अभी संक्रमण चलेगा ना उसका, संक्रमण कहाँ ज्यादा है? हाँ? आप क्या प्रश्न क्या है? सत्ता की, यानी उसका क्षय कहाँ होता है उसकी बात करें। हाँ, यहाँ पर होता है, देखो ना, हमने देखा ना उसका जो स्वामी, अभी हम देख रहे हैं देव गति में कौन कौन सी होती है वो देखना। देव गति यानी वो जो उद्वेलना वाली प्रकृति है ना, उसमें हमको उसके कौन कौन से होते हैं देखो, 417 में, हाँ आठवें गुणस्थान में बंध विच्छित्ति हुई। यहाँ क्या लिखा है? बंधावली के व्यतीत होने पर, अब यहां देखो, बंध का अभाव होने पर भी अधव प्रवृत्त संक्रम ही होता है, क्योंकि वे प्रशस्त प्रकृतियां हैं। ये बात यहां आई, देखो 417 पृष्ठ पर तीसरी लाइन में, हम तो गुण संक्रमण कहते हैं परंतु वो तो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, इसलिए उसमें अधव प्रवृत्त संक्रमण ही होता है, तीसरे लाइन में लिखा है। ये क्या है, कभी कभी वो तो हम प्रशस्त और अप्रशस्त में जो कुछ ये गुण संक्रमण अप्रशस्त में होता है गुणित प्रमाण में अपूर्वकरण के बाद, और यहां पर उनके तो अध प्रवृत्त संक्रमण ही कहा है उसका। मनुष्य गति रूप जो होता है ना, तो एक एक फाली निकलती चली जाती है उसकी, उसके पहले ये संक्रमण चल रहा है। तो मैक्सिमम कहां पर है वही तो बता रहे हैं, जो मनुष्य गति में होता है वो तो त्यूक संक्रमण होता है। देखो ये नीचे लिखा है इसके बारे में, ये जो प्राकृत में जो स्टार है, जो साइन है ना अंतिम, वो नीचे लिखी है। देवगई नवगस्य सग बंधन तालिगम गंतुम, यानी देवगति का जो नया बंध है ना, उसका आवली काल बीत जाने पर, तथा देवगति नवकम, देवगति देवानुपूर्वी वैक्रेक सप्तक लक्षणम यदा पूर्वकोटि पृथक्तम यावत आपूर्य अष्टम अष्टम भवे क्षपक श्रेणीम प्रतिपन्न सन स्वकबंधांतात, यानी अपना बंध के अंत में, अंत से स्वबंध व्यवच्छेदात अनंतरम आवलिका मात्रम कालम अतिक्रम्य, अपने बंध की विच्छित्ति होने के बाद आवली काल के बाद, यानी बंध कहाँ तक हुआ, आठवें के छठे भाग तक, उसके पश्चात यानी बंध रुक जाने के आवली काल के पश्चात अतिक्रम्य यशकीर्तौ प्रक्षिपति। ओह किसमें प्रतिपक्ष प्रक्षेपण होता है, यश कीर्ति में प्रक्षेपण होता है इसका। ये हम तो मनुष्य गति में समझ रहे थे। तदा तस्य उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमो भवति, तदानिम ही प्रकृति अंतर दलिका नामपि गुणसंक्रमेण लब्धानां संक्रमावली अतिक्रांतत्वेन संक्रमः प्राप्यत इति कृत्वा। ये मलयगिरी कोई है उनके, मतलब मुझे लगता है वो कर्म अभी आए थे ना मलय की बात, पहले पेज पर लिखा था, देखो मलयगिरी ऐसा कुछ लिखा था, आचार्य मलयगिरी ऐसा कुछ लिखा था, श्वेतांबर है ना वे कर्म प्र ये यहाँ पर लिखा था हमने, देखो 425 पृष्ठ आचार्य मलयगिरी कर्म प्रकृति आदि श्वेतांबर ग्रंथों में, वो स्त्रीवेद के बारे में जो हमने देखा था। अब आगे पढ़ेंगे, कुछ कुछ बातें उन्होंने वही रखी होगी ना जो, हाँ हाँ नाम कर्म की है ना, अन्य नाम कर्म प्रकृति रूप से हो जाते हैं, क्योंकि भले गति के बारे में हम वो मालूम है पिंड रूप से, परंतु अभी तीर्थंकर प्रकृति है आहारक जो है, तो ये किस किस रूप से होती है, वो अन्य नाम कर्म की प्रकृति रूप से हो जाते हैं। अब हम आगे की बात पढ़ेंगे आहार शरीर की। आहार शरीर अंगोपांग, आहार शरीर बंधन और आहार शरीर संघात का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जिस गुणित कर्मांशिक जीव ने चिरसंचित इन चार प्रकृतियों के साथ चार बार कषायों का उपशम किया है। चिरसंचित ने लंबे काल तक संचित, और तत्पश्चात जो क्षपणा में उद्यत हुआ है उसके परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति हो जाने के पश्चात अवली मात्र काल के बीतने पर उक्त चार प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है, जब यहाँ वो परभविक नाम कर्मों के साथ आहार कहार अंगोपांग का भी बंध विच्छित्ति होती है, तो उसके बाद अवली काल के बाद उसका प्रदेश संक्रमण उत्कृष्ट होता है। औदारिक तेजस व कारमान शरीर तथा नीचे, हाँ नीचे तो उसका कसाय के बदले कसाय या इतना ही पाठ है कसाय। अच्छा, प्रदेश संक्रमो आहारग तिथयरम स्थिर सममुक्कस समग कालम। क्या आहारक और तीर्थकर का स्थिर समम उक्कस समग कालम यानी स्थिर के समान है, यह मात्र भावना। आहार सप्तकम तीर्थंकर नाम च उत्कृष्टम स्वबंध कालम यावद आपूर्य तत्र आहार सप्तकस्य स्वबंध काल उत्कृष्टो देशो नाम पूर्वकोटिम यावत संयमम अनुपालयतो यावान अप्रमत्तता कालस्तावान सर्वो वेदितव्या। अब आगे अपना बंध काल पूर्ण होने के पश्चात आवली काल के बाद, अब ये लगातार बहुत बार बनता आया है तो उसका संयम काल बढ़ाया वहां पर सातवें का काल, और चार बार कषाय को उपशम आया है तो उपशम ने वो आठवें में भी बांधता है ना, तो उसको भी ज्यादा बांधा है। औदारिक तेजस्व कारमन शरीर तथा उनके अंगोपांग बंधन और संघात की प्ररूपना मति के अनावरण के समान है। हमने देखा था मति ज्ञान और क्षपित कर्मांशिक लिया था, सातवें वाला लिया था तीर्यंच में आने के आवली के बाद, निकाल के देखो उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण गुणित कर्मांशिक सातवें वाला तीर्यंच में आने के आवली काल बाद लिखा था ना, उसमें क्या लिखा है? हाँ, आवली काल के बाद, हाँ ऐसे इसका लेना। प्रशस्त संस्थान, प्रशस्त सहनन, सुभग आदेय और सुस्वर का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक 266 सागरोपम काल तक सम्यक्त्व का पालन करके और चार बार कषायों को उपशमा करके क्षपणा में उद्यत हुआ है, उसके परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति हो जाने के पश्चात, ये प्रशस्त संस्थान कौन सा है? समचतुर्थ संस्थान। आवली मात्र काल के बीतने पर उनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। देखो ये जो है ना, वो सबकी बंध विच्छित्ति वहां पर नहीं है, समचतुर्थ संस्थान की है, सुभग आदेय सुस्वर की भी है, परंतु प्रशस्त सहनन की बंध विच्छित्ति कहां पर है? वज्र ऋषभ नाराज की चौथे में है। हाँ, यहां लिखा है विशेष इतना है कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम अंतिम देवभव के अंतिम समय में होता है। परंतु वहां तक तो उसको बंद हो रहा है ना, ये पहले बांधा हुआ कभी देख, नीचे कुछ लिखा है हम उसको देखेंगे। सम्मदिठिस सुभधुआओ भी सुभ सगयन जुयाओ बत्तीस सयोदही चियाओ। ये संगण चाहिए, संगयन सुभ संगयन जुयाओ। सम्यक दृष्टे है या शुभ ध्रुव बंदिन्य, सम्यक दृष्टि की जो शुभ ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं कौन कौन सी, पंचेंद्रिय जाति समचतुर संस्थान परघात उच्छ्वास, ये उच्छ्वास हुआ है उच्छ्वास, प्रशस्त विहार गति, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक सुभग सुस्वर आदेय लक्षणा, द्वादश प्रकृतयः शुभ सहनन युता वज्रऋषभ नाराज सहनन सहिताः तथा ही, वह इस प्रकार है। क्या कहते हैं, ये जो सम्यक दृष्टि है वो पंचेंद्रिय जाति का ही बंद करेगा, समचतुर संस्थान का ही बंद करेगा, परघात उच्छ्वास सब उसमें आ जाते हैं। परंतु वज्रऋषभ नाराज सहनन को अलग क्यों बांधा, क्यों लिया, देव सम्यक दृष्टि उसका बंद करेंगे हाँ, परंतु मनुष्य सम्यक दृष्टि इसका बंद नहीं करेंगे, इसलिए इसको अलग से गिनाया। अभी इसको बताते हैं। षट षष्ठी सागरोपमाणी यावत सम्यक्तम अनुपालयम एता बधनाती, ये सम्यक दृष्टि के लिए ये शुभ ध्रुव बंदी प्रकृतियां बताई। जब तक शास्त्र सागरोपम उसका उत्कृष्ट काल है उसका बंद होते रहेगा। ततो अंतर्मूर्ते कालम यावत सम्यक सम्यक मिथ्यात्वम अनुभूय पुनरपि सम्यक्त्वम प्रतिपद्यते। वहां पर 66 सागर के बाद एक अंतर्मूर्तम के लिए तीसरे गुणस्थान में आकर फिर दोबारा सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। ततो भूयोपि सम्यक्त्वम अनुभवन षट्षष्ठी सागरोपमानी यावत एता प्रकृति बधनाति, यानी ऐसा होने पर भी फिर सम्यक्त्व का अनुभव होता हुआ 66 सागरोपम काल तक इन प्रकृतियों का बंद होता है। तदेवम द्वात्रिंशत अभ्यधिकम सागरोपम शतम यावत सम्यक दृष्टि ध्रुवा आपूर्य वज्रषभ नाराच सहननम तु मनुष्य भवहीनम यथा संभवम उत्कृष्टम कालम आपूर्य। क्या कहते, तदेवम यानी वहां पर भी द्वात्रिंशत अभ्यधिकम सागरोपम शतम, द्वात्रिंशत अभ्यधिकम 132 हो गए ना, 66 और कुछ अधिक, वो बीच वाला अंतर्मूर्त भी ले लिया तो 132, ये साधिक 132 सागरोपम यावत तब तक सम्यक दृष्टि ध्रुवा आपूर्य, यानी सम्यक दृष्टि जीव ये जो ध्रुवबंदी की उसका बंद करके वज्रषभ नाराज सहननम तु मनुष्य भवहीनम यथा संभवम उत्कृष्टम कालम आपूर्य, यानी मनुष्यों को छोड़कर वज्रषभ नाराज सहनन का भी बंद करता है। अभी वो नारकी भी करेंगे और देव भी करेंगे। तथा सम्यक दृष्टे है ध्रुवा अपूर्वकरण गुणस्थान के बंध व्यवच्छेदान अंतरम आवलिका मात्रम कालम अतिक्रम्य यशकीर्त्यव संक्रमयतः तासाम उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमः, यानी ये ऐसा जो ध्रुव बंदी प्रकृतियों को बांध कर सम्यक दृष्टि अपूर्वकरण गुणस्थान में बंध की विच्छित्ति करने के बाद एक आवली काल जाने पर यश कीर्ति में उसका संक्रमण होता है। ये सब प्रशस्त प्रकृतियों का यश कीर्ति में संक्रमण होता है। अंतिम देवभव में इसलिए लिया हाँ, ऊपर जो हमने देखा था ना, अंतिम देवभूमि के अंतिम समय में। हाँ वज्रऋषभ नाराज को छोड़कर की बात है ये सब। प्रशस्त ध्रुवबंदी नाम कर्मों का सम्यक्त्व काल सबसे रस्य हुआ है, रस्व करना चाहिए। अभी हमने जो पढ़ी ना लिस्ट, वो प्रशस्त ध्रुवबंदी हुई। उसका सम्यक्त्व का काल रस्व करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना गुणी तत्व बन नहीं सकता। चार बार कषायों को उपशमा कर जो क्षपणा में उद्यत होता है, उसके परभविक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति के पश्चात आवली मात्र काल के बीतने पर उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। इसी प्रकार स्थिर और शुभ हुआ शुभ प्रकृतियों के विषय में कहना चाहिए। परघात उच्छ्वास का आधा करना, छह आधा। परघात उच्छ्वास प्रशस्त व्यायोगति त्रसब आदर पर्याप्त, या के ऊपर बिंदी आ गई। पर्याप्त और प्रत्येक शरीर की प्ररूपना शुभ नाम कर्म के समान है। यश कीर्ति की भी प्ररूपना शुभ नाम कर्म के समान है। विशेषता इतनी है कि उसका चाहिए, उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम परभवीय नामानम बंध विच्छित्ति के अंतिम समय में करना चाहिए। यश कीर्ति का बंध तो दसवें तक है। हाँ, पर जहाँ अन्य जो परवैक नाम कर्मों की बंध विच्छित्ति होती है, वहीं पर इसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम है। बाद में इसको संक्रम करने के लिए तो दूसरी प्रकृति नहीं होगी ना, ऐसा कुछ होगा। शुभ प्रकृति है इसलिए। तो यश कीर्ति को 39 में नहीं लिया था ना, क्या लिया था? यश कीर्ति लिया था उसमें। अदब प्रवृत्त संक्रम ही होता है। यश कीर्ति को हमने 33 नंबर दिया था। अब फिर आते हैं अपनी जगह पर। एकेंद्रिय आतप और स्थावर नाम कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक ईशान देव देव पर्याय से पीछे आकर एक बार भी कषायों को न उपशमा कर सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होता है, उसके निक्षेपण करते हुए अंतिम समय में उनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। ये ख्याल में है क्या होता है? एकेंद्रीय आतप स्थावर नाम कर्मों का क्षय कहाँ पर होता है, क्षपणा कहाँ पर होती है? नवे गुणस्थान में। ये जो नाम कर्म की 13 प्रकृति और स्थान वृद्धि 3, 16 का एक साथ क्षय होता है ना, उस पोजीशन पर उसका जो अंत में सर्व संक्रमण होगा, वहां पर इसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रमण होगा। इसलिए कौन सा जीव लिया पहले में? पहले गुणित कर्मोशिक लिया, ईशान देव में से लाया ने, वहां पर उसने मैक्सिमम वो एकेंद्रिय संबंधी बंद किया था और फिर उपशम भी नहीं किया, क्योंकि वहां पर भी कुछ ना कुछ उसका वो संक्रमण वगैरह होता रहता है। अब इसका कारण क्या है?
नहीं, एक वाक्य रह गया। ईशान कल्पगत देव पर्याय से पीछे आकर सर्व संक्रम के द्वारा उद्योत नाम क्रम का संक्रमण करने वाले क्षपक के उसके उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का स्वामित्व देना चाहिए, क्योंकि आतप और उद्योत भी वहीं पर क्षपित क्षपणा उनकी भी होती है इसके साथ, इसलिए उसको भी इसके साथ ले लिया। इसका कारण क्या है? समाधान, त्रस जाति नाम कर्मों को बहुत बांधता है, नाम कर्मों को, और एकेंद्रीय जाति नाम कर्मों को, कर्मों को स्तोक बांधता है। इसलिए नारक जीव उद्योत नाम कर्म को त्रस जाति नाम कर्म के प्रतिभाग रूप बांधता है, परंतु ईशान देव उसको ही एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के प्रतिभाग रूप बांधते हैं। क्या कहना चाहते हैं? नारक जीव तो एकेंद्रीय जाति को बांधेगा ही नहीं, तो वो त्रस के साथ ही उद्योत को बांधेगा, और ईशान देव एकेंद्रीय के साथ भी बांध सकता है, त्रस के साथ भी बांधते, उद्योत की बात है। एकेंद्रीय में उद्योत होता है कि नहीं होता है? है ना? हाँ, आतप तो एकमात्र एकेंद्रीय में होता है, और उद्योत तो एकेंद्रीय में भी होता है, और हाँ वो विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय में भी होता है, सब में होता है, मानते हैं। इस कारण 431 पेज, ईशानगत देव पर्याय से पीछे आए हुए जीव के उद्योत नाम कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम का स्वामित्व देना चाहिए। अप्रशस्त संस्थान, अप्रशस्त सहनन, ये कौन सा वाला अप्रशस्त है संस्थान? हाँ, पांचों लेने हैं। अप्रशस्त वर्ण गंध रस स्पर्श उपघात, अप्रशस्त विहाय गति, निज गोत्र, अस्थिर अशुभ, दुर्भग दुस्वर अनादे और अयश कीर्ति, इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक नारकी जीव सातवीं पृथ्वी से निकलकर सर्व लघु काल में क्षपणा में उद्यत होता है, वो अभी उसमें वो बीच में वो तिर्यंचप का भोग करेगा, फिर मनुष्य में जाएगा, इसलिए सर्व लघु काल में लिया, यानी डायरेक्ट तो आकर वहां से तो जाने वाला नहीं है मोक्ष में। उस अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के उक्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। अभी ये जो प्रकृतियां हैं उनका बंध तो नीचे ही रुक जाता है ना, कितने ही वो तो पहले दूसरे में, और जो गंध स्पर्श रस गंध वर्ण है वो आठवें में, अलग अलग जगह पर है ये सारे, और यश कीर्ति है वो छठे में, परंतु उसका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम है वो दसवें के अंत में है। द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण नाम कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? ये तो सारे क्षपणा वाली, यानी उसका क्षय हो जाता है नवे में, जो तिर्यंच और मनुष्यों में पूर्व कोटि पृथक्त्व तक विचरण करके, देखो द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति और सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण नाम कर्मों का बंध कौन से जीव कर सकते हैं? चार गति में से मनुष्य और तिर्यंच ही करेंगे, देवों को ही नहीं बनती और ना ही नारकियों को बनती है, इसलिए कोटि पृथक पृथक मनुष्य और तिर्यंचों में विचरण कराया, कषायों को न उपशमा कर सर्व लघु काल में एक क्षपणा करता है, उसके संक्रम करते हुए अंतिम समय में उनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। यानी क्षपणा के अंतिम समय विशेष इतना है, यह अपर्याप्त नाम कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में होता है। हाँ, क्या कहते हैं? देखो पहले में पहले उसने बांधी है मनुष्य और तिरियंचों में दीर्घ काल तक, कषायों को नहीं उपशमाया है क्योंकि वहां भी जो कुछ वो खिरना होता है वो नहीं हुआ, और लघु काल में क्षपना करता है। अंतिम समय सर्व संक्रमण का जो क्षपणा का, ये 13 प्रकृतियों का क्षय होता है ना, उसमें एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति वो सबको एक साथ दिया था 9वें गुणस्थान में, जहाँ 16 का क्षय होता है उसमें ये नाम कर्म की 13 प्रकृतियों में इनका भी नंबर है। अभी हमने देखा था ना एक केंद्रीय स्थावर आतप, उसी पोजीशन पर ये इनका भी क्षय होता है। उच्च गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो गुणित कर्मांशिक 4 बार कषायों को उपशमा कर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात निज गोत्र को बांधता हुआ जो निज गोत्र की बंध विच्छित्ति के पश्चात बंध हुए, बंध विच्छित्ति के पश्चात थोड़े ही काल में सिद्धि को प्राप्त होने वाला है, उस अंतिम समयवर्ती निज गोत्र बंध के उक्त अल्प सिद्धि काल के प्रथम समय में उच्च गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम होता है। इस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम स्वामित्व समाप्त हुआ। अब यहाँ जघन्य प्रदेश संक्रम के स्वामित्व की प्ररूपणा की जाती है। अब तक तो उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम किसको होता था उसकी बात देख के आए, अभी हम जघन्य प्रदेश संक्रम की बात करेंगे। यथा मति ज्ञानावरण का जघन्य प्रदेश संक्रामक कौन होता है? जो अभव्य सिद्धिक प्रायोग्य सर्व जघन्य सत्कर्म के साथ 4 बार कषायों को उपशमा कर, यह अभव्य सिद्धिक भी कहा परंतु अभव्य सिद्धिक प्रायोग्य कहा, यानी अभव्यों में जितना हो सकता है सर्व जघन्य सत्कर्म, अभव्यों में जितना कम से कम सत्व हो सकता है ऐसा जीव लिया। प्रायोग्य लिखा है ना, अभव्य अभव्यों की बात नहीं हो रही है, अभव्यों के समान सर्व जघन्य सत्कर्म के साथ 4 बार कषायों को उपशमा कर, पहले में पहले उसका सत्ता में कर्म कम से कम था, 4 बार कषायों को उपशमाया, बहुत बार संयम असंयम एवं संयम को प्राप्त करके उत्पन्न हुए अवधि ज्ञान से संयुक्त होता हुआ क्षपण करता है, उस अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के मति ज्ञानावरण का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। उसमें तो हमने देखा था ना ज्ञानावरण में तो अधः प्रवृत्त संक्रमण ही होता है और उसकी बात यहाँ ली है, यानी उसका पहले में पहले सत्ता में जघन्य था उसका, और फिर बहुत बार संयमासयम संयम को प्राप्त किया है। श्रुत ज्ञानावरण मनपरे ज्ञानावरण केवल ज्ञानावरण की प्ररूपणा मति ज्ञानावरण के समान है। क्या क्या नहीं नहीं अभव्य को क्यों लिया यहाँ पर, भव्यों को भी उसी वैसे ही होगी ना, जघन्य के लिए लिया है। अभव्य सिद्धिक प्रायोग्य सर्व जघन्य सत्कर्म, जैसे सूक्ष्म एकेंद्रियों में जो कुछ सर्व जघन्य कर दिया उसने है, हाँ भव्यों में जघन्य तो श्रेणी में होता है, तो श्रेणी को छोड़कर वाली बात ली है, पहले गुणस्थान में जितना जघन्य हो सकता है ऐसा लिया,
ऐसा ले लो। परंतु पहले गुण स्थान में भी जघन्य कैसा हो सकता है कि वो पहले ऊपर से चढ़ जाके आया है, तो उसका भी जघन्य हो सकता है, इसलिए अभव्य योग्य जघन्य लिया। या अनादि मिथ्या दृष्टि का जघन्य ले लो ना, एक ही बात है ना। हाँ यानी चार बार कषाय को उपशम आया है, बहुत बार संयमा संयम संयम को प्राप्त किया है, तो इन्हें एक क्षपित कर्मांशिक में भी ऐसे ही हमने लिया था। उत्कृष्ट में हम हर बार गुणित कर्मांशिक को लेते थे, अब यहाँ क्षपित कर्मांशिक को लेना है, इतनी बात है। अब यहाँ अवधि ज्ञान प्राप्त करके उसने जो क्षपणा किया है ऐसा जीव लिया। हाँ अब अन्य तीन को इसके लिए सब साथ लिया, शुद्ध ज्ञाना वरण हुआ, वरण करो उसको, स्पेशलिटी हिंदी वालों की। अवधि ज्ञानावरण की भी प्ररूपना इसी प्रकार ही है, विशेष इतना है कि क्षपणा करते हुए उसके अवधि ज्ञान नहीं होता यह कहना चाहिए, जघन्य की बात है ना। चक्षु अचक्षु और केवल दर्शनावरण की प्ररूपना मति ज्ञानावरण के समान है, अवधि दर्शनावरण की प्ररूपना अवधि ज्ञानावरण के समान है। वो ओ उसको साथ में लेना, अवधि। निद्रा और प्रचला की प्ररूपना श्रुत ज्ञानावरण के समान है, विशेष इतना है कि निद्रा और प्रचला का जघन्य संक्रम अवधि ज्ञाने के ही होता है ऐसा नियम नहीं है। वो नियम भी एक शब्द करना, नियम। हाँ ऊपर तो नियम बताया था, विशेषता बताई थी। निद्रा और प्रचला के जघन्य संक्रम को बंध विच्छेद के अंतिम समय में ही देना चाहिए। ये बंध विच्छित्ति कहाँ पर है याद है? आठवें के पहले भाग में। हाँ स्त्यान ग्रुद्धि त्रय का जघन्य प्रदेश संक्रम किसके होता है? जो क्षपित कर्मांशिक रूप से आकर संयम को प्राप्त हो, सर्व जघन्य अंतर्मूर्त मात्र संस्कार संसार के शेष रहने पर अंतिम समयवर्ती अधप्रवृत्त करण हुआ है, उसके उस समय स्त्यान वृद्धि त्रय का जघन्य प्रदेश संक्रम होता है। प्रदेश नीचे जो लिखा है ना सेकंड लाइन में, अयर छावट्ठी दुगम गालिय थीवेय थीन गिद्धि तिगे सग खवण हा अहापवत्तसं अवापवत्तसंत। अध प्रवृत्त करण हुआ, अध प्रवृत्त करण हुआ, प्रवृत्त करण क्या है वो? यानी वो सातवें में किया उसको ले ना। क्योंकि बाद में तो उसका अलग टाइप का संक्रमण शुरू होता है, इसलिए वो जघन्य प्रदेश संक्रम यहाँ लिया। इसकी बात कल देखेंगे, यादा प्रवृत्त संक्रम क्या है उसकी। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा भी